हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दो दिन बाद होली थी और आज प्रीति ने आयुष्मान को जल्दी घर आने को कहा था। उसे मार्केट जाकर कुछ सामान लाना था, इसीलिए उसने आयुष्मान को जल्दी बुलाया था। पर दोपहर से शाम होने पर भी आयुष्मान नहीं लौटा था। उसका फ़ोन भी ऑफ था, इसीलिए प्रीति उससे बात तक नहीं कर पाई थी। घड़ी शाम के 7 बजा रही थी जब ज़ोर से बेल की आवाज़ उनके फ्लैट में गूंजी। प्रीति अपने बेडरूम में मानसी और आश के साथ थी। आश खेलने के मूड में था। मानसी ने गरिमा जी को कॉल लगाया था और उन्हीं से बातें कर रही थी जब प्रीति के कानों में डोरबेल की आवाज़ पड़ी। वो तब गरिमा जी से बच्चे के बारे में कुछ बात कर रही थी, इसीलिए उसे बाहर जाने में थोड़ा वक्त लगा। गेट पर खड़ा आयुष्मान बड़ी बेसब्री से दरवाजे के खुलने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुला और उसकी नाराज़ बीवी उसके सामने आ खड़ी हुई। प्रीति ने अपने मोटे मोटे गालों को गुब्बारे जैसे फुलाया हुआ था और नाराज़गी से उसे देख रही थी। जल्दी नहीं आ गए आप? इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? आराम से रात के 12 बजे आते। दुकान वाला तो आपका रिश्तेदार है ना, तो तब तक आपके आने की राह देखता रहेगा और हम आराम से जाकर सामान खरीद लेंगे। आयुष्मान को देखते ही प्रीति उस पर बरस पड़ी। उसने आयुष्मान को ताने पर ताना फेंक कर सीधे उसके मुंह पर जड़ा और आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। प्रीति का गुस्सा देखकर आयुष्मान ने अपनी गलती मानते हुए तुरंत ही क्षमा मांगते हुए सफाई पेश की। सॉरी, मैं निकलने ही वाला था पर एंड टाइम पर एक अर्जेंट मीटिंग आ गई और मुझे वहां रुकना पड़ा। आयुष्मान की बात पर प्रीति ने भौंसे कोड़कर उसे घूरा और गुस्से से उस पर भड़क उठी। अगर मीटिंग आ रही थी तो मुझे फ़ोन या मैसेज करके इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे कि आपको आने में देर होगी? अगर आपको मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं लगा तो कम से कम अपना फ़ोन तो ऑन रख सकते थे ताकि मैं ही आपसे बात कर लूँ। पर नहीं, काम के आगे तो आपको मैं दिखती ही नहीं। मीटिंग आई तो फ़ोन ऑफ करके बैठ गए मीटिंग में, और यहाँ मैं बेवकूफ़ों की तरह आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपको फ़ोन पर फ़ोन कर रही हूँ, पर आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा इससे? बीवी इंतज़ार करती है, परेशान होती है तो हो, आप तो बस अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। मतलब आपकी मेरे अपनी वाइफ के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? मैं क्या आपको पागल नज़र आती हूँ जो 4 बजे से तैयार होकर आपका इंतज़ार कर रही हूँ, बार बार आपको फ़ोन कर रही हूँ, पर आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। आपके लिए वो मीटिंग मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए, जाकर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कीजिए। बीवी का क्या है, वो तो सारी रात भी आपका इंतज़ार कर सकती है, आखिर इसके अलावा और कोई काम तो नहीं मेरे पास? प्रीति गुस्से में चंडी रूप धारण किए अपनी तीखी बातों से आयुष्मान का सीना चीरने को आतुर थी। उनकी शादी को 9 महीने हो गए थे और इन 9 महीनों में ये दूसरी बार था जब प्रीति इस कदर आयुष्मान से खफा हुई हो और इतना भड़की हो उस पर। पहली बार टीवी के लिए भड़की थी और अब बीवी बनने के बाद उसके देर से आने पर उसकी क्लास लगा रही थी। आयुष्मान तो प्रीति का ये रौद्र रूप देखकर शॉक्ड रह गया था। आयुष्मान ये तो जानता था कि देर से आने पर प्रीति उससे नाराज़ होगी, पर उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रीति इस कदर गुस्से से बौखला उठेगी, इसीलिए वो अचंभित सा आंखें फाड़े और हैरानगी से मुंह खोले उसे देखने लगा था। जैसे जैसे प्रीति की बातें आगे बढ़ने लगी, आयुष्मान के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। प्रीति ने अपनी बात पूरी कर ली और खफा खफा सी नाराज़गी से मुँह फुलाए आयुष्मान को देखने लगी। प्रीति जैसे ही चुप हुई, आयुष्मान ने बेहद शानदार लहजे में कहा, प्रीति, रात को मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया था। लंच में ही मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और अचानक मीटिंग में जाने के कारण मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी परवाह या कदर नहीं। अगर तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करके परेशान थी तो मैं भी वहाँ परेशान था कि मैं तुम तक नहीं पहुँच पा रहा, तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहा। मीटिंग में होकर भी मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही था और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं बिना एक सेकेंड गवाए सीधे घर के लिए निकला था। आई नो मैंने गलत किया है, तुम्हें इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा, मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, बस इस बार माफ़ कर दो। आयुष्मान ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार किया और शांति से प्रीति को अपना पक्ष समझाया। उसने अपनी अनजाने में हुई इस गलती की माफ़ी भी मांग ली और उसको वादा भी कर दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसकी बातों से प्रीति का गुस्सा अब कुछ शांत हो गया था। उसने मुँह लटकाते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं भी गलत थी, मुझे बिना आपकी बात सुने आप पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये जानते हुए कि आप कितनी परवाह करते हैं मेरी, आप पर ऐसे झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। ये जानते हुए कि आप जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कभी इंटेंशनली मुझे हर्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको गलत समझा जो मुझे नहीं समझना चाहिए था, पर मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए जब आपने आने में इतनी देर लगाई और आपका फ़ोन भी बंद आया तो मुझे आप पर गुस्सा आ गया और गुस्से में मेरे मुँह में जो आया मैंने सब बोल दिया। प्रीति ने अब हौले से अपनी पलके उठाकर आयुष्मान को देखा और मुँह बिचका कर बोली, सॉरी। पल में माशा और पल में तोला, ये लड़की भी हद थी। एक पल पहले गुस्से से ज्वालामुखी बनी फटी जा रही थी और अब नदी की शीतल धारा जैसे शांत हो गई थी। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितनी जल्दी प्रीति का लहजा बदला था। पर यही तो प्रीति की खूबी थी, जब गुस्सा आता तो बिना सोचे समझे जो मुंह में आता वो बोल जाती, पर गलती का एहसास होते ही एकदम मासूम बन जाती और अपनी गलती की माफी मांगने से भी पीछे नहीं रहती थी। प्रीति का मन बच्चों जितना मासूम और कोमल था, पल में नाराज होती पर मनाने पर मान भी जाती थी। प्रीति का मासूम इनोसेंट सा चेहरा देखकर आयुष्मान के लबों पर मुस्कान ठहर गई। प्रीति की यही अदाएं तो पल पल आयुष्मान के लिए उसके प्यार में इजाफा करती जा रही थीं। इट्स ओके, अच्छा बताओ तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना वक्त कैसे लग गया? कहीं अपनी नाराजगी और गुस्से में मुझे रात भर बाहर ही रखने का तो इरादा नहीं था तुम्हारा? आयुष्मान ने प्रीति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मजाकिया लहजे में ये बात कही थी ताकि उसका मूड ठीक हो जाए, पर उसकी बात का उल्टा ही असर हुआ। प्रीति मुंह बिचकाकर उसे देखने लगी और नाराजगी से बोली, आपको मैं ऐसी वाइफ लगती हूँ जो गुस्से में अपने पति को घर से निकाल दूं? आयुष्मान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और प्यार से उसके फूले हुए गाल खींचते हुए बोला, नहीं मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि कहाँ बिजी थी जो गेट खोलने में इतना वक्त लग गया? वो मैं मम्मी जी से बात कर रही थी इसीलिए वक्त लग गया, आप भी बात करेंगी उनसे? प्रीति ने जैसे ही अपनी बात पूरी की आयुष्मान के लबों की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसने तुरंत ही इनकार में सर हिला गया, नहीं तुम जाकर बात करो, मैं पहले चाय पीऊंगा फिर चलेंगे शॉपिंग पर। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने आंखें बड़ी बड़ी करके आयुष्मान को देखते हुए हैरानगी से सवाल किया, कपड़े नहीं बदलेंगे आप, फ्रेश नहीं होंगे? नहीं बाहर ही जाना है तो आकर एक बार ही फ्रेश हो जाऊंगा, वैसे मानसी कहाँ है और मेरा बेटा जाग रहा है या सो रहा है? आयुष्मान ने बड़ी ही चालाकी से बात का रुख ही बदल दिया। प्रीति ने उसका सवाल सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, आपका शैतान बेटा सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लगता है उसे भी पता चल गया कि आज हम बाहर जाने वाले हैं इसीलिए सो ही नहीं रहा, अभी अपनी दादी से बात कर रहा है, मानसी उसके पास ही है।
आयुष्मान भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और जैसे ही उसने किचन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया प्रीति ने उसकी बांह पकड़ ली, जिससे आयुष्मान आगे कदम नहीं बढ़ा सका। उसने पलटकर प्रीति को देखा तो वो चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में कुछ सवाल झलक रहे थे।